كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ففجرنا خلالهما نهرا. اور وہ باغ جو تھے وہ بہترین انداز سے پھل آتے تھے، بے تحاشا اس میں ہم نے نہریں بجائی تھی، جس کے لیے وہ باغ تھا فقال کہ جو اس باغ کا مالک تھا جب اس نے اپنے ساتھی سے بات کی کہنے لگا انا اکثر من کا مالم و اعز نفرا، اس کو مخاطب کر کے کہا انا اکثر من کا، میں تیرے مقابلے میں مال کے اعتبار سے بہت زبردست ہوں، بہت کثرت سے مال میرے پاس، وہ اعز نفرا اور نفر یعنی جو جمعیت میرے پاس ہے قرآن کی اس کے لحاظ سے میں بہت باعزت ہوں. دیکھیں یہی وہ چیز ہے، یعنی یہ کیا چیز ہے، یہ کہاں سے یہ فکریں جنم لیتی ہیں، جب انسان خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. رسول اللہ فانساهم انفسهم، اللہ کو بھولنے کی وجہ سے، خدا کے رشتہ ولایت کو فراموش کرنے کی وجہ سے پہلا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے، اور پھر دماغ میں اس قسم کے افکار گھومنا شروع ہو جاتے ہیں. انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، مال کے لحاظ سے میں بہت کثرت کا حامل ہوں اور نفر خدا کے لحاظ سے باعث ہوں. ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا کس حالت میں، وهو ظالم لنفسه، اپنے نفس پر ظالم تھا، وہ اس حالت میں اپنے باغ میں داخل ہوا کہ خود اپنے نفس کے لیے ظالم تھا. کہ جب انسان کے دماغ میں اس قسم کی فکر پیدا ہو جائے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے. قال ما اظن ان قدیل هذه ابدا، اور کہتا ہے کہ میں تو یہ خیال رکھتا ہوں کہ یہ سب کچھ کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی یہ جس طریقے سے مجھے یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں ہمیشہ ایسی ملتی رہیں گی. وما اظن الساعه قائمه، اور میں تو نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی. لیکن اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو پھر وہاں میں مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا ملے. یعنی کیا مطلب، اس نے اس بات کا گمان کیا کہ جسے خدا نے کثرت مال اور ظاہری شان و شوکت پر عزت دی ہے تو اصل میں خدا کی نعمت اور انعامات یہی چیزیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے میری اہلیت کی وجہ سے مل رہی ہیں، میری قابلیت کی وجہ سے مل رہی ہیں، اور کیونکہ خدا نے میری قابلیت کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے تو ہمیشہ لے گا، ہمیشہ ملے گا. اور لہو صاحبہ، تو ابو جو اس کا دوسرا ساتھی تھا، لہوان جو ہاڑ بے روکو، اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم اس کا کافر ہے، اس سے منکر ہے جس نے تجھے مٹی سے خلق کیا. لیکن یہ وہی بات، تو انساهم انفسهم، یہی چیز کہ جسے خدا یاد رکھتا ہے اسے ہمیشہ اپنی حقیقت یاد رکھتی ہے، اور جو خدا کو بھول جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھول کر اور اپنے لیے کچھ چیزوں میں فائد ہو جاتا ہے جو اسے انجامن تباہی سے بچا کر دیتی ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر مٹی کے خلاصے کو نطفہ بنایا، ثم صوّرک رجلا، اور اس نطفے سے تجھے ایک مرد بنا کے کھڑا کر دیا. لیکن هو اللہ ربی، نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے. ولا اشرك بربی احدا، اور میں اپنے رب احد کے ساتھ کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا. یعنی تو جو اپنے لیے اس عزت کا قائل ہو رہا ہے، تو جو اپنے لیے ایک قہر کا غلبے کا قائل ہو رہا ہے، حقیقتا اب تیرے دماغ میں کیا خانہ سما رہا ہے کہ تو خدا کی صفات میں اس کا شریک ہو رہا ہے، اس لیے کہ خدا نے ہر انسان کو جو کچھ دیا ہے اس کے ریسپانسز دو ہونے چاہیے، پہلا ریسپانس شکر خدا اور دوسرا ریسپانس اس نعمتوں کے ذریعے سے بندگان خدا کو پیسہ پہنچانا، بس باقی آپ کو پتہ ہو جائے گی. اس کے آگے کچھ نہیں کہ خدا نے رزق معنوی عطا کیا ہے، رزق ظاہری عطا کیا ہے، दो काम कीजिए बस। अगर आप उसे अपने पास महसूस करते हैं, शुक्र खुदा सजदा शुक्र में लगाइए और उससे खुद इस्तफादा कीजिए और अल्लाह के बंदों को उससे इस्तफादे में शरीक करिए। बस ये नहीं कि मैं बाइज्जत हो गया, मैं बड़ा काबिल फख्र हो गया, मैं ये हो गया, मैं हूँ, ये सब के सब मुशरिकाना सोचे। अगर तू अपने बाग में दाखिल होता तो क्या ही अच्छा होता कि कहता कौन तमाशा अल्लाह खुदा तू बता अल्लाह कि तूने किस किस्म के जुमले कहे, कितना ही अच्छा होता कि तूने ये कहा होता कि अल्लाह ने मेरे लिए क्या ही अच्छा चाहा, वो अल्लाह तू बता अल्लाह बिल्लाह हकीकत ये सब कुछ कुव्वत खुदा से इन तरह में खाना अपना मैं क्या मार रहा वो बना था। अगर तू आज मुझे देखता है कि मैं माल और औलाद में करीब हूँ तो मैं उम्मीद रखता हूँ अपने रब से कि अंतरी मुझे तेरे बाप से बेहतर रखा गया। मिसाल के तौर पर वो अफराद कि जो जाहिरी एतबार से अपने को कमतर महसूस करते हैं दूसरों के मुकाबले में, उनके लिए दस क्या है, हसद का शिकार नहीं होना, रश का शिकार नहीं होना, जिस खुदा ने उसे दिया है उसी खुदा के सामने तुम भी इतना दामन लगा दो। जब वो तो उसे दे सकता है, दूसरों को दे सकता है, तो नहीं बनी है तुम भी उसी के मसल अल्लाह के बात वहां तक हम पहुंचे जहां तक बात करना चाह रहे हैं कि जब वो बाप तक पहुंचा तो किस हालत में देखा कि वहिया खाबियत आया उरुशहा कि वो गिरा पड़ा हुआ था अपनी छत के ऊपर। एक मुकम्मल तबाही का जो सीन नजारा है कि पहले छत गिरी और उसके बाद दीवारें उसके ऊपर आ गई, यानी कि उसकी कैफियत क्या थी, वह आयना पुरुष अवियतुन गिरा पड़ा था अपनी छतों पर। अब उसने कहा यकूलो या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा या लैतनी काश लम उशरिक नहीं शेयर करता बेरब्बी अपने रब के साथ किसी और। वलम तकुन लहू फितरतुन यनफुरूनहू और अब उसके पास कोई लश्कर नहीं था जो उसकी मसलत करता। कह रहा था ना कि मैं बहुत बाइज्जत हूं, मेरे पास बहुत जमीन है, अब कोई उसके पास लश्कर नहीं था जो उसकी मसलत माना मिन दून अल्लाह है अल्लाह के सिवा। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक इस जुमले के लिए अपील है। हुनालिका उस वक्त उस इंस्टेंस पर उससे ये बात समझ में आई कि वलायत वाबत एक जबर के साथ सरपरस्ती लिल्लाहिल हक हकीकतन से फैलाई गई। लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि इन्हें एक बहुत खतरनाक पहलू जो हम हमारी जिंदगियों के साथ चल रहा है वो टाइमिंग का है कि सही बात सही वक्त पर समझ में आए तो फायदा देती है। समझ में तो हर एक कोई बात आ जाएगी, जो दीन है जो हक है इस इंसानियत में एक शख्स भी ऐसा नहीं बचेगा कि जिसको समझ में आए। लेकिन जिसे वक्त पर समझ में आएगी वो उससे फायदा उठाएगा और अबदी सादत को हासिल करेगा, और जैसे वक्त गुजरने के बाद समझ में आएगी उसके समझने से कुछ हासिल नहीं होगा और बताने का वक्त ही शिकार होंगे। सूरह वनाजियात की कुछ आयतें आपके खिदमत बयान करूं जो भी जिक्र आ गया कि कयामत के दिन कुछ अफराद ऐसे होंगे कि जिनकी नजरें झुकी हुई होंगी और उस वक्त वो अल्लाह से खशियत की हालत में होंगे। लेकिन अल्लाह से खशियत की हालत में होने के बावजूद जानना में चले जाएंगे कि खशियत परवरदिगार मारिफत हक हर इंसान को इस दुनिया से गुजरने के बाद हासिल हो जाएगी जब पर्दे हट जाएंगे। लेकिन उस वक्त मारिफत का हासिल होना इंसान को अजाब से बचा नहीं सकेगा। या लैतनी कब कहना है, या लैतनी हम उस वक्त ना कहने वाले बन जाए कि जब मसला खराब हो गया, इसका फायदा यहां भी एक या बैतनी है और यकूल और या बैतनी है, काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता, लेकिन या बैतनी किसी काम का नहीं है। जब जाहिर हो जाना हुनालिका वलायतो लिल्लाहिल हक वलायते इलाही का नजर आ जाना, अब किसी काम का नहीं। तो हमें ये सारी की सारी बातें कब समझना है कि जब हम मैदान अमल में हैं, जब हम कुछ करने के काबिल हैं। फिरौन ने भी ये बात कही कि जब डूबने लगा कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाया, लेकिन मैं अपनी फायदा नहीं है कि जब ये चीज तुम्हारे सामने हर तरीके से मुख्तलिफ अंदाज से पेश की गई उसको कबूल नहीं किया। तो देखिए इस बात को याद रखिए, और ये मैंने ने इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया, अगर हम उनके शेर हदीस पढ़े या मुख्तलिफ पढ़े उन्होंने ये बात बहुत ज्यादा कही और बार बार इस जुमले को कहा है कि मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है नौजवानों तुमसे, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हालत सबसे बेहतर है, तुम आमादा और मुस्तैद हो हक को कबूल करने के लिए। बातिल का रेशा पौधा अभी तुम्हारे नफ्स के अंदर कमजोर है और तुम्हारे लिए ये पूरा मैदान खराब है, कहीं तुम भी मुझ बूढ़े की मानी ना हो जाना जिसने सारी जिंदगी सिर्फ फील और पाल में गुजार दी और वहां से कुछ नहीं किया। जो कि जब मैं कुछ के अंदर तो इंसान जब नौजवानी की हालत में होता है तो शैतानत का पौधा कमजोर होता है, इंसान को कभी होता है। लेकिन अगर इसी हालत में, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हरबा क्या है, इंसान को झूठी उम्मीद दिला, कल करना उसके मुकाबले में पैगंबर की हदीस आपके सामने नाम कर, पैगंबर ने फरमाया कि अगर तुम्हारे हाथ में एक पौधा है जिसे तुम जमीन में बोना चाहते हो लगाना चाहते हो तो चाहे कयामत भी आ जाए उसको जमीन में बो के रहो। यानी जो चीज तुम्हें सही समझ में आ रही है, जो अमल है कभी किए बगैर ना छोड़ो, जो वहां समझ में आ रही है उसके पीछे ना हटो, कयामत ही क्यों ना आ रहा है ठीक है आगे, यानी कभी चीज को कल पे ना डालो। हमारे हम सब के साथ, मेरे को ऐसा नहीं कि मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, हम सब बैठकर इसको सीखना चाह रहे कि ये वो चीज है कि शैतान ये कहता है कल कल कल, आज क्यों कुरान पढ़े, आज क्यों और करें, अभी इतने सारे मसाइल हैं, अभी मुझे मसाइल के तौर पर जॉब के मसाइल, ये जॉब कब तक चलेगी बताएं, ये कारोबार कब तक चलेगा। लेकिन इंसान अगर खुदा ना करता इस दुनिया से किस हालत में चला गया कि कुरान से उसका रिश्ता कायम नहीं हुआ, अब अभी शकावत है या नहीं। जैसे कि जुमला में अक्सर आपके साथ पेश करता हूं कि इंसान की जिंदगी की अप्रोच उस वक्त बिल्कुल बदल जाती है जब वो इस बात को महसूस कर लेता है कि मेरी जिंदगी अवधि और दायमी है, और जब तक वो ये महसूस करता रहता है कि मेरी जिंदगी अवर तक है, उसकी अप्रोच ऑफ लाइफ कुछ और होती है, और जब वो इस हकीकत को दर्ज कर लेता है कि मेरी ये जिंदगी कभी नहीं खत्म होने वाली, हमेशा चलने वाली, तो उसकी अप्रोच ऑफ लाइफ कुछ और होती है। इन्हें फिर वो अपनी जिंदगी की उस पूरी रेंज को सामने रखते हुए काम करता है, और जो सिर्फ अवर तक अपनी जिंदगी को महदूद समझता है वो सिर्फ इतने से स्पैन को सामने रखते हुए काम करता है। तो कुरान से बेबहरा रहना, कुरान से लाताल्लुक रहना, मारफे अहले बैत से बेबहरा, ये दामिमी और अबदी शकावत है। मैंने अगर से ये कोई काबिल पसंदीदगी नहीं है बात, मैं इस चीज को किसी रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं कह रहा, लेकिन अगर इंसान के लिए कि ये चीज बतौर चॉइस आ जाए कहीं पर कि दुनिया की खुशहाली या कुरान अहले बैत से ताल्लुक, तो हम बिल्कुल मुतमईन हो गए उसको छोड़ दीजिए, इसलिए कि वो सारी की सारी चीजें चल रोज जिंदगी है, अच्छे खाने नहीं खाएंगे सूखे खाने खाएंगे, अच्छे बिस्तर पर नहीं सुनेंगे जमीन पर सुनेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसकी उससे बेबहरा होने की वजह से जो मेरी असल जिंदगी को नुकसान पहुंचेगा, जो मेरी हकीकी जिंदगी को नुकसान पहुंचेगा उसका इजाला करने वाली कोई चीज नहीं। यहां तक हमारे लिए इंकरेजमेंट के एतबार से बातें मौजूद हैं कि आइन इमाम ने फरमाया कि अगर तुम अपने जैसी कोशिश कर लो कुरान से बरी होने की, तो इवन जाहिर है कि हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि हम कुरान पर मुकम्मल तौर से आमीन हो या अहाता कर सके, तो इमाम ने फरमाया कोई बात नहीं, खुदा कब्र में फरिश्ता भेजेगा कुरान सिखाने के लिए, लेकिन रस्ते पर तो आओ। इन्हें जैसे कहें कि इस रिश्ते विलायत को कायम करो, अगर ये रिश्ते विलायत कायम हो जाए तो जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये रिश्ते विलायत कभी टूटने वाले हैं, बाकी सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये विलायत वाला रिश्ता हमेशा बाकी है, चाहे मोमिनीन के साथ हो, चाहे आइमा के साथ हो, चाहे पैगंबर के साथ हो, चाहे वाला के साथ हो, ये रिश्ते विलायत हमेशा बाकी है। इन चीजों का इदराक करना हमारे लिए जरूरी है और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने अभी आपकी खिदमत में ये वाक्य अर्ज किया कि होता यह है, सबसे बड़ा खतरा ये कि इंसान मादी खुशहाली की वजह से इस गलत फहमी का शिकार हो जाता है कि हर चीज बिल्कुल सही और अच्छी है। इसी वजह से मोमिन को खुदा कभी इस गलतफहमी का शिकार नहीं होने देता। इन्हें जो हदीस आप पढ़ते हैं ना कि 40 दिन नहीं गुजरते मगर कोई ना कोई परेशानी मोमिन के लिए खड़ी होती, इसी वजह से होती कि इंसान को अगर फारिग-उल-बाली आसूदगी मादी खुशहाली इस तरीके से नसीब हो जाए कि जैसे बास लोग कहते हैं कि मेरा मसला यह है कि मेरे पास कोई मसला नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी, लेकिन ये चीज इंतहाई खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? कि इंसान इस आसूदगी की वजह से गलत फहमी का शिकार हो जाता है कि जैसे खुदा ने दुनिया में ये सब मजे मुझे दिए हैं तो ये सारे मजे अबदन और दायमन मेरे लिए आगे मिले, जबकि हकीकी जिंदगी की सआदत को खुदा ने वाजह तौर से कुछ चीजों के साथ मशरूत कर दिया, जिनमें सबसे पहली चीज ईमान बिल्ला है, जिनमें सबसे अहम चीज हमारे सामने है, जिनमें सबसे अहम चीज इत्तेबाए पैगंबर है, और अगर आप उस एतबार से गौर करें तो फिर हमारे लिए जिंदगी के और मसाइल हैं। इन्हें सबसे बड़ा मसला नुसरत इमाम है, और नुसरत इमाम की राह पर इंसान जब आगे बढ़ता है तो फिर आसूदगी वगैरह कुछ भी नहीं मुश्किल। मोहब्बत खुदा में आगे बढ़ने का सबसे पहला नतीजा आपकी खिदमत में सिर्फ क्या होता है? इंसान की रातें नींद से खाली होना शुरू हो जाती है। हमें किसी के साथ ये चीज खुदा की मोहब्बत की सबसे पहली पहचान कि इंसान जब लोगों के दरमियान होता है तो बेचैन रहता है, इन्हें जैसे वही है कि गैरों के दरमियान रहते हुए बेचैनी महसूस होती है तो भाग के महबूब के पास जाओ, और जब रातों को उसे खिलवत नसीब होती है तो उसकी नींदें उड़ जाती हैं कि किस तरीके से ज्यादा ये तो मुझे उसके साथ तन्हाई का मौका मिला है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसके साथ गुजार, तो ये तो चीज रहती नहीं जैसे हम कहते हैं मादी खुशहाली आदि तो रहती नहीं मोमिन के लिए, यानी कि जिसे कहते हैं कि वो दर्द कि जिसके बाद हर दर्द से बेनियाज हो जाता है इंसान, लेकिन ये दर्द ऐसा है कि जो इंसान को कभी चैन से नहीं लाने देता, वो क्या है? खुदा से मोहब्बत, कि तेरी मोहब्बत में दर्द का दवा पाया, मेरे दर्द की दवा पाई और दर्द का दवा पाया, कि खुदा की मोहब्बत क्या चीज है कि हर दर्द की दवा है और बाजार में खुद ऐसा दर्द है कि जो उस तक पहुंचे बगैर इसकी कोई दवा नहीं, वैसा ने परवरदिगार के बगैर इसकी कोई दवा नहीं, तो ये बेताबी के जनाब सैयदा से शायद तो मैं या सलमान ने आगे कहा कि अली अलैहिस्सलाम जो है वो रातों को इस तरीके से मैंने हालत में देखना कि गोया खुदा की बारगाह में गिरिया से जैसे रूह परवास कर गया, आपने फरमाई आज ही मैं मालूम है कि तुमने कोई अजीब और वही चीज नहीं देखी, अली हर रात में ऐसे होते हैं। तो ये सब रियलिटीज ऑफ लाइफ, यानी ये मैं अपनी खिदमत में कोई अफसाने नहीं बयान कर रहा, ये कोई कहानी नहीं है बल्कि असली जिंदगी है। हम खुदा ने हमें मादी खुशहाली दे दी, खाने को अच्छा दे दिया, रहने को अच्छा दे दिया, हमने समझ लिया कि दुनिया और आखिरत की फलाह सादत हासिल हुई। इस खतरे से बचाने के लिए खुदा मोमिन को सुकून से नहीं रहने देता, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई चीज। और इसी चीज को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुआ रफा में बयान फरमाया कि हर तकलीफ, हर मसला, हर चीज मुझे तेरी तरफ लेके चलती है। जी जुमला इस जिंदगी में आने वाली हर चीज, हर मसला मुझे तेरी तरफ धकेलता है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह गुफ्तगू अभी भी दशमा है और हकीकत विलायत पर जैसा खुद एक किताब मौजूद है कि उसमें जितने पहलुओं से बात की गई है तो गुफ्तगू और फैल सकती है, लेकिन अब मैं दो एतबार से इंशाअल्लाह पहली बात करके इसको समेट दूंगा। एक विलायत के इज्तिमाई के एतबार से और दूसरा ये कि इस राह विलायत के हवाले से खुद हमारे लिए क्या मैसर है और क्या मुमकिन कर। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.